मित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारी प्रार्थना सभा में आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित है। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। लगभग 45 से भी अधिक वर्षों से आप मधुबन कर्म भूमि पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी है, बहुत निर्माण और बहुत आज्ञाकारी है। कोई मधुबन का तीनों डिपार्टमेंट भी संभाले और इतना आज्ञाकारी होकर के बड़ों के साथ चले, ये बहुत विरल व्यक्तित्वों में विशेषता देखने मिलती है। इतना नजदीक से मैंने आपको इसलिए देखा है कि यूथ विंग में आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और जब से मधुबन कोऑर्डिनेटर है तब से यूथ विंग के कारोबार में बहुत नजदीक से काम करने का मौका रहा है। दूसरी एक विशेषता आपकी ये रही है कि एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद बाबा की उस बात को आपने स्वीकार किया। बाबा ने कहा मुझे भोजन बनाने वाला, टोली बनाने वाला कोई मेरा योगी बच्चा चाहिए, तो आपने वो भी एक एग्जाम्पल पूरा किया है। आपने यज्ञ के टोली डिपार्टमेंट को संभाला, लेकिन फिर भी जो अंदर छिपी हुई विशेषता है, भगवान उसको किसी भी तरह से यूज करता है। आज देश विदेश में आप इतने बाबा के बच्चों को जाकर के उमंग उत्साह भरते हैं, अपनी विशेषताओं का दान कर रहे हैं और कितने विदेश देश में बाबा के नए नए बच्चे भी आपसे प्रेरित और प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो ये एक समर्पण भाव का बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल है कि बाबा ने जो कहा आपने स्वीकार किया और आपकी विशेषताओं को किस तरह से भगवान ने उभारा है और एक कैसा व्यक्तित्व की देन आपको बाबा ने दी है। ऐसी एक आज विरल और विशेष आत्मा हम सबके बीच है। आज सब्जेक्ट भी आपका बड़ा गह्य विषय है। आपका आज का टॉपिक है पवित्रता की पराकाष्ठा, नेगेटिविटी को अलविदा। बाबा ने सिर्फ हमें बाह्य पवित्रता की बात नहीं की है, हमें पूरा प्यूरिफाई होकर के वापस घर जाना है। तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ आज विषय को थोड़ा अच्छी तरह से खोल करके हमारे पास स्पष्ट करें। आदरणीय आता भाई जी।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की शक्ति का बहुत ही महत्व है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। क्योंकि पवित्र आत्माओं पर ही परमात्म प्यार सदा बरसता रहता है। जितनी पवित्रता उतनी समीपता परमात्मा से। हम अनुभव करते रहते हैं, पवित्र आत्माओं से ही यह संसार सदा रोशन रहता है। पवित्रता के आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध प्राप्त होता है। जैसी पवित्रता वैसी पात्रता, भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए होती है। सतयुग में हर एक व्यक्ति को ताज होता है, एक भी देवी देवता बिना ताज वहां नहीं होता है। लेकिन उस ताज का कनेक्शन है संगम युगी पवित्रता के ताज का। जिन आत्माओं का जैसा पवित्रता का ताज संगम युग में होता है, छोटा बड़ा, वैसा संग सतयुग में स्थूल ताज रतनजड़ी ताज उनको मिलता है। पवित्र आत्माओं की इस संसार में पूजा होती है, अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते आए हैं। अर्थात इस संसार में पवित्रता की पूजा होती है। आत्मा की जो क्वालिटी है, फर्स्ट क्लास क्वालिटी, सेकंड क्लास क्वालिटी, वो पवित्रता के स्थिति पर निर्भर होती है। जिनकी संगम योग में बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति होती है, उनकी क्वालिटी भी बहुत ऊंची होती है। माँ बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी धर्म पिताई संसार में होकर गए हैं, उन सबसे बहुत ऊंची बाबा की पवित्रता की स्थिति थी, इसलिए बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। पवित्रता के स्तंभ के रूप में हमारे सामने बाबा की स्थिति है मधुबन में। प्यूरिटी इज अ रियल ब्यूटी ऑफ ए सोल। आत्मा की जो सुंदरता है प्यूरिटी पर आधारित होती है। प्यूरिटी इज अ रियल प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल। प्यूरिटी इज अ रियल पर्सनैलिटी ऑफ ए सोल। प्यूरिटी इज इंक्रीज the security against माया। जितनी प्यूरिटी होती है उतनी श्योरिटी हमारी बढ़ती है। प्यूरिटी मेक्स यू फ्लाइंग बर्ड, इम्प्यूरिटी मेक्स यू जेल बर्ड। तो पवित्रता का संबंध सुंदरता के साथ होता है। जितनी आत्मा पवित्र होती है उतनी वो सुंदर कहलाती है। अगर आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज होती है, अपवित्रता के दाग होते हैं, तो आत्मा रूपी हीरे की वैल्यू कम होती है। मुझे घर वापस जाना है बेदाग हीरा बनकर। कंप्लीट प्यूरिटी की परिभाषा क्या है? संपूर्ण पवित्रता अर्थात न मुझे किसी से आकर्षण है न किसी को मेरे से आकर्षण है, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। न मेरा किसी से आकर्षण है, लगाव है, न किसी का मेरे से है, दोनों बातें क्लियर है। Nobody is in my way and I am not in anybody's way. मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं है और मैं भी किसी के रास्ते में नहीं हूं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, बाबा मेरा संसार है। ब्राह्मण आत्माएं कहीं इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, चलते चलते थोड़ी शिकायत करते हैं, पता नहीं ये ब्राह्मण जीवन मोचों का जीवन है, सबसे ऊंचा है, सारे क्लब में सबसे ऊंचा ये ब्राह्मण जन्म है, लेकिन ये मौजों का जीवन, मुझे मौजों का जीवन अनुभव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सतयुग भी इसके सामने फीका है। यहां हमें परमात्म पालना मिल रही है, फिर भी ये जीवन मुझे मौजों का जीवन क्यों अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चलते चलते किसी आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में अपवित्र संकल्प चलता है, एक भी संकल्प चलता है, तो बड़े भारी चार नुकसान हमें होते हैं। पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पहला नुकसान, किसी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है तो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को मारते हैं और उसको जो इंजरी होती है, उसकी जो स्थिति नीचे आती है, वो सबसे बड़ा महा महा पाप है। बाबा कहते संगम युग में किसी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलना महा महा पाप है। ये उसका बोझा हमारे सिर पर बढ़ता जाता है। दूसरा नुकसान, आत्मा वैसे ही कमजोर है और अपवित्र संकल्प चलता है तो उस संकल्प के द्वारा बहुत आत्मा की ऊर्जा खर्च होती है, नष्ट होती है, आत्मा और भी कमजोर होती है। तीसरा नुकसान, उस आत्मा की जो स्थिति नीचे होती है आती है, मेरे कारण उसको जो चोट लगती है उसको मैं नीचे गिराता हूं, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, तीसरा नुकसान। और हरेक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उस आत्मा पर, वो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर ठका करता है और उससे रिवर्स मेरे तरफ आता है और मुझे डिस्टर्ब करता है। बहुत सुंदर जो योग के अनुभव मैं करना चाहता हूं उससे मैं वंचित रहता हूं, ये चौथा नुकसान। चला एक ही संकल्प लेकिन नुकसान चार हो गए, इतने बड़े हो गए। इसके कारण ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन हमें अनुभव नहीं होता है। समझा? जो बाबा के नए बच्चे होते हैं, नए नए बाबा के पास आते हैं, कभी कभी शिकायत करते हैं। जब से मैं राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया, मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे संकल्प चलते हैं और कैसे कैसे स्वप्न आते, जिंदगी में कभी नहीं आए थे वो मुझे अभी आ रहे हैं। पता नहीं कारण क्या है। इस राजयोग का अभ्यास करना शुरू रखो या छोड़ दो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे भाई? हाँ जी, हाँ, पहले तो मेरी स्थिति अच्छी थी, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाना शुरू किया मेरी स्थिति और भी बिगड़ रही। हाँ जी, हिसाब किताब चुकता होता है। कोई कड़ी बीमारी स्किन की होती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है भाई ये मीठी गोलियां खाओ सारी बीमारी बाहर आएगी, घबराना नहीं, लेते रहना, एक दिन आएगा सारी बीमारी खराब खत्म हो जाएगी। अब यहां आते ही हमने कौन से पैथी शुरू किया? राजयोगा पैथी, होम्योपैथी या राजयोगा पैथी। तो जैसे होम्योपैथी के साथ साथ राजयोग का पैथी शुरू करते हैं तो 63 जन्मों का कचरा आत्मा में है सारा बाहर आता है, अच्छी बात है, नहीं तो गंदगी अंदर ही रहेगी। तो ये राजयोग का पैथी आत्मा की क्लींजिंग प्रोसेस है, सारी 63 जन्मों की बीमारी को खत्म करता है, ये सुप्रीम डॉक्टर है। बड़े धैर्यता से हमें उसका सामना करना है और उसको खत्म करते जाना है और स्वयं को फ्री करना है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, बाबा की उम्र 60 साल के थे, उन दिनों की बात है ये। बाबा बनारस में गए, अपने मित्र का बंगला था, बंगले के पीछे बगीचा था। संध्या के समय बाबा ध्यान करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो अचानक ध्यान में चले गए। क्या अनुभव कर रहे थे, मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूं, उड़ने का आनंद ले रहे थे और अचानक बाबा को एक संकल्प आया कि जसोदा कहां है। जसोदा माना बाबा की धर्मपत्नी, हमेशा बाबा ट्रेवल करते थे ना लौकिक में तो पत्नी के साथ करते थे। तो जसोदा कहां है, संकल्प आते ही प्लेन क्रैश हो गया। फिर बाबा चौंक गए, ये क्या हो गया, केवल याद देहधारी की, अशुद्ध संकल्प तो बहुत दूर की बात है। तो प्योरिटी की निडल इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी किसी आत्मा के प्रति थोड़ा लगा होता है तो फट से एरर दिखाती है। ये बाबा के जीवन की शुरुआत थी और बाबा ने ऐसा अभ्यास किया आत्मिक स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का, ऐसा अभ्यास किया आस पवित्रता का स्तंभ के रूप में बाबा के स्थिति हमारे सामने खड़ी है। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति है और स्तंभ अर्थात अचल अटोल स्थिति है। गृहस्थी में रहने वाले सोचें कि मेरा बाप है ब्रह्मा बाप, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, थर्ड व्यक्ति नहीं, मेरा बाप है। अगर मेरा बाप इतनी ऊंची स्थिति बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं। केवल उनके कदमों पर कदम रखते जाना है, उनको फॉलो करना है, बस। समझा? पवित्र जो शब्द है ना, पवित्र, इत्र उसमें अंतर्निहित है, इत्र था सुगंध, चरित्र इत्र उसमें भी अंतर्निहित है। चित्र से चरित्र दिखाई देता है और चरित्र से दिव्यता की सुगंध हमें अनुभव होती है, पवित्र से पवित्रता की सुगंध हमें अनुभव होती है। ऐसी पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सी विधि को अपनाना होगा? सबसे पहली विधि, थोड़ी तालियां बजाओ राजा, कोई कोई आंखें बंद कराए जरा, अच्छी तरह से बजाओ। थैंक यू। नाश्ता करके बैठते हैं ना लोग, काफी सारे सुस्ती में माया को नमस्कार करते हैं, नमस्कार, नमस्ते माया। दोपहर युक्षाभ्यास हुआ ना नमस्कार करने का। होता है थोड़ा थोड़ा सुस्ती आती है, ये समय ऐसा है। सबसे पहली विधि, पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छी बनाने के लिए सबसे पहली विधि है आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना। फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें, जो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिज्म का, चुंबक का चैप्टर है उसमें प्रिंसिपल क्या है, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है तो अट्रैक्शन होगा, दोनों साउथ है तो रिपल्शन होगा। तो मैं मेल और ये फीमेल समझेंगे तो अट्रैक्शन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उससे हमें ऊंचा उठना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, भाई भाई रिपल्शन हो जाएगा और जो भी हमारा लगाव झुकाव है वो खत्म हो जाएगा। ये मास्टर की है सबसे बढ़िया युक्ति पवित्रता की स्थिति को बनाने के लिए, ये है भाई भाई की दृष्टि सबसे बड़ा हथियार। बाबा कहते भाई बहन से भी ऊपर उठो, भाई बहन का आपस में पवित्र स्नेह है, लेकिन पवित्र स्नेह भी अपवित्र स्नेह में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि माया की दुनिया है, तमोपधान वातावरण है, इसलिए कभी भी माया का चाटा लग सकता है। इसलिए इससे ऊपर हमें उठना है। जब भी कोई सामने आता है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक निराकार शिव पिता की संतान। वी आर द सोल्स चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर। अपवित्र संकल्प आ ही नहीं सकते, एक ही बाप के बच्चे हैं। मैं 87 में 700 कुमारों का क्लास यहां करा रहा था ओम शांति भवन में, पवित्रता के टॉपिक पर 700 कुमार थे। मैंने उनको समझाया सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। क्लास पूरा होते ही आर्ट गैलरी में मुझे 20-25 कुमारों ने घेर लिया, ठहरो जाना नहीं यहां से, हमारा जब प्रश्न का जवाब देना होगा आपको। अच्छा बोलो भाई, कौन सा जवाब है, प्रश्न है आपका? आपने कहा सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं, तो मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, सेम सजातीय ध्रुव हो जाए तो रिपल्शन हो जाएगा, फिर बाबा कैसे याद करेंगे? समझा प्रश्न? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बाबा को कहा बाबा जल्दी मुझे तुरंत इंस्टेंट टचिंग चाहिए, नहीं तो ये मेरा इंसल्ट नहीं होगा, ये आपको जल्दी देना होगा। बाबा ने दो मुझे टचिंग दी है। देखो बच्चे, जब आत्मा कंपैरिजन करते हैं परमात्मा के साथ, तो आत्मा फीमेल कहलाती है, परमात्मा मेल कहलाता है। आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। ता फॉर मेल, ती फॉर फीमेल, तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरी टचिंग बाबा ने दिया कि हम सभी आत्माएं सीताएं हैं, है ना, सजनिया है, और साजन हमारा कौन है? शिव बाबा। वो राम है, हम सभी सीताएं हैं, और हम सभी को रावण की जेल से निकालने के लिए आया है, तो अपोजिट हो गया, वो राम और हम सीताएं हो गए, तो अपोजिट हो गया तो आकर्षण होगा। ये दूसरी टचिंग मिली। तो जब ये दोनों बातें बताई, उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। कहने का भाव है गुप्त ही गुप्त आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करना है। हमारी 63 जन्मों की गलत आदत है, एक जन्म की नहीं, कितने जन्म की? 63 जन्म के, देह समझना और देह को देखना। बहुत कड़ा संस्कार 63 जन्मों का है, इससे हमें ऊपर आना होगा। मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, मैं तो एक चमकता हुआ स्टार हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, ज्योति बिंदु सितारा हूं, और जो भी सामने आता है चमकता हुआ सितारा है। बस सी सी तारा, जो भी सामने आता है उसको तारा देखो, स्टार देखो, ठीक है। बहुत अच्छा, इसमें आपका अनुभव आगे बढ़ता जाएगा। अभ्यास की बात है। दूसरी विधि, पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करने के लिए दूसरी विधि है, हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मेरा बाप जो शिव है, पवित्रता का सागर है। मेरी मां जो है ब्रह्मा मां, वो मास्टर पवित्रता के सागर है। मेरा जन्म ब्रह्मा मुख वंशावली से हुआ है, ब्रह्मा मुख से हुआ है, अर्थात पवित्रता से हुआ है। तो बच्चा कैसा होगा भाई? मैं हूं ही बच्चा पवित्र। मां पवित्रता का सागर, मास्टर पवित्रता के सागर, और शिव बाबा पवित्रता का सागर। मेरा जन्म पवित्रता से, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, पवित्र बच्चा। मैं अपवित्र आत्मा हूं, मुझे पवित्र बनना है? नहीं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। दृष्टिकोण हमें सकारात्मक रखना है, देखना बहुत अच्छी तरह से, तेजी से आपकी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा काला निकलेगा क्या? सावड़ा होगा? माँ बाप गोरे तो बच्चा भी गोरा होगा ना? तो मेरे माँ बाप इतने गोरे हैं, इतने पवित्रता के सागर, तो मैं बच्चा भी तो गोरा होना है, मैं तो बच्चा भी तो पवित्र होना है। तीसरी युक्ति, पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति बनाने के लिए हर रोज एक प्रयोग करना है अमृत वेले आपको, हर रोज। जैसी आंख खुलती है ऐसा अनुभव करना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर आपके सामने खड़े हैं और आप बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बाबा गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग। अभी बहुत प्यारा मैं बाबा का बच्चा हूं, तो निराकार बाप मुझे निराकारी तिलक, आत्मा का तिलक अपने हाथ से लगा रहे, उंगली से लगा रहे, मुझे निराकारी बाप निराकारी तिलक मुझे आत्मा का लगा रहा है और मुझे आत्म अभिमानी भाव का वरदान भी दे रहे। बच्चे सारा दिन भर में आत्म अभिमानी बनकर रहो, ठीक है। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूं बाबा की, तो उस निराकारी तिलक पर बाबा दूसरा तिलक लगा रहे, वी शेप का, विजय का तिलक, सर्वशक्तिमान बाप मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। बच्चे सारे दिन भर में युद्ध के मैदान में आपको विजयी बन के रहना है, भगवान मुझे वरदान दे रहा है। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूं, उस डबल तिलक पर पवित्रता का सागर बाप मुझे बहुत सुंदर पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। स्वयं पवित्रता का सागर बाप मुझे बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी पहना रहे हैं। तो ऐसा प्रयोग करके सारे दिन भर में इसी स्मृति में रहना है, मैं आत्मा डबल तिलकधारी और पवित्रता की ताजधारी होकर कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। आप देखना अपवित्र संकल्प चल ही नहीं सकते। यहां पर भी आप जाएंगे ऑफिस में घर में धार में, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का देव हूं, पवित्रता का अवतार हूं, पवित्रता के सागर ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है और ड्यूटी दी है। जहां आप जाओगे वहां पवित्रता की खुशबू आपको फैलाना है, ये ड्यूटी भी दी है। ऑफिस में कोई काम करने के लिए नहीं जा रही हूं मैं, वाइब्रेशन फैलाने जा रहा है। पवित्रता की देवी हूं, देवता हूं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने जा रही हूं। अंदर से अभ्यास करो, इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और कोई आपको देखेगा भी तो आपसे वो अनुभव करेगा, ये पवित्रता के वाइब्रेशन आ रहे इनसे। चौथी युक्ति, आत्मा में जो छोटे बड़े दाग हैं अपवित्रता के सूक्ष्म अंश वंश के रूप में, उसको मेल्ट करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का अनुभव करना है। साधारण योग न हो लेकिन ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास हो। देखना कोई दाग आपकी आत्मा पर नहीं रह सकता है। योगाभ्यास हम करते हैं हर रोज, लेकिन जो चाहिए, जो शक्तिशाली योगाभ्यास चाहिए, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास चाहिए, वो हमें बढ़ाना है। साधारण योग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कड़े संस्कार हमारे 63 जन्म के हैं। और हम कहां जा रहे हैं, किसके वंश में जा रहे हैं, विष्णु अर्थात विष्णु, अंश मात्र भी विष जहर विकार का आत्मा में न हो। ये बाबा की विष्णु की यादगार है, मुझे विष्णु से समीप रहना है, सतयुग में बाबा के साथ राज करना है, कृष्ण के साथ राज करना है, तो मुझे भी मास्टर विष्णु बनना है। तो जब भी अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, मुझे आज शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना ही है, ऐसी दृढ़ता के साथ बैठेंगे, होकर रहेगा अनुभव। ठीक है। और पांचवी युक्ति, पवित्रता के सागर के कंठे पर हमें बैठे रहना है। जब भी समय मिलता है सागर के कंठे पर बैठ जाओ, जैसा संग वैसा रंग। पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठता हूं तो पवित्रता का रंग मुझ आत्मा को लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा की कंपनी में बैठना है। ऑटोमेटिक रंग लगता रहेगा, रंग बदलता जाएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई युक्ति को हमें अपना कर अपवित्रता को जड़ से खत्म करने का ठान लेना है। ये जहर, विकार का जहर मुझ आत्मा में बिल्कुल ना हो, इम्प्यूरिटी का पॉइजन खत्म करना है। चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करके रहूंगा, लेकिन इसको मैं खत्म करके ही रहूंगा। ठीक है, अभी पवित्रता की स्थिति मेरी आगे बढ़ रही है या नहीं और कहां तक बढ़ रही है वो कैसे पता चलेगा, उसकी टेस्ट कौन सी होगी? भाई 5 साल से 10 साल से मैं इस ज्ञान में चल रहा हूं, योग का अभ्यास कर रहा हूं, कितनी मेरी पवित्रता की स्थिति अच्छी है कैसे पता चलेगा? चेहरा प्रसन्नचित होगा। हाँ जी, शुगर फट से वो थर्मामीटर दिखा देता है, वो ग्लूकोमीटर, आज कल 101 थी और आज 110 है, बढ़ गई। तो पवित्रता की स्थिति को चेक करने की दो विधियां है, दो तरीके हैं, संकल्प को के द्वारा और सपनों के द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार की मेरी स्थिति पवित्रता की है। अगर मुझ आत्मा में अपवित्रता के अंश हैं तो उससे अपवित्र संकल्प निकलते जाएंगे, बदबू निकलती जाएगी। अभी भी अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं, माना वो बदबू अंदर है अभी भी काम विकार की, और जैसे वो दाग खत्म हो जाएगा, अपवित्र संकल्प चलना बंद हो जाएगा और हमेशा महान संकल्पों का प्रवाह, पवित्र संकल्पों का प्रवाह मन में चलता रहेगा। पानी का घड़ा बहुत अच्छा भरा है, पानी अच्छे पानी से भरा है, उसमें गंदा पानी निकलेगा तो नहीं ना, क्योंकि पानी अच्छा भरा है आपने। अगर हमें एक भी अपवित्र संकल्प चलता है तो हमें केवल नुकसान नहीं होता है, कई आत्माओं को नुकसान होता है, कई आत्माओं को बोल रहा हूं मैं। बाबा ने कहा है, हरेक सितारे की अपनी दुनिया होती है, हरेक सितारे में अपनी दुनिया होती है। ये जड़ सितारे नहीं, ये चेतन सितारों की बात है। हरेक सितारे की अपनी दुनिया है। कौन सी दुनिया है? सारे कल्प में जितनी भी आत्माएं मेरे संबंधी रूप में होते हैं, प्रजा के रूप में होते हैं, भक्तों के रूप में होती है, सारी मेरी दुनिया है। अगर मुझे अपवित्र संकल्प चलता है तो उनका प्रभाव उन पर पड़ेगा, उन पर भी अशुद्ध संकल्प चलेंगे, और मुझे पवित्र संकल्प चलता है तो उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनको भी पवित्र संकल्प चलेंगे। इतना बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर है, खुद की नहीं, इतनी सारी आत्माओं की, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। इसलिए इसलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे इस कल्प की सिचुएशन होती है, संसार की सिचुएशन होती है। हम जब पवित्र होते हैं सारा संसार पवित्र होता है, और जैसे हम नीचे आते हैं सारा संसार नीचे आता है। कौन लाता है नीचे? हम लाते हैं। ठीक है, अगर समझो अभी भी मुझे किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न पड़ता है तो समझो वो इम्प्यूरिटी अभी भी मेरे आत्मा में है, समाई हुई, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं उन संस्कारों का बहुत गहरा प्रभाव अपने अर्ध चेतन मन पर होता है। स्वप्न पढ़ते हैं लेकिन संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, बाबा के सेवा के बारे में पढ़ेंगे, बाबा के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें चेक करना है, एकांत में बैठकर चेक करना है कि सचमुच मुझ आत्मा की कितनी सफाई हुई है, कितना अपवित्रता का कचरा आत्मा से निकला हुआ है। बाबा कहता ना, धोबी हूं मैं, धोने के लिए आया हूं, कपड़ा धोने के लिए आया हूं, आपका पुराना जर्जर कपड़ा जो हुआ है उसको धोने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, अभी पवित्रता की स्थिति हमारी आगे बढ़ रही है, उसकी निशानियां क्या होती है? पहली निशानी, पवित्रता की स्थिति जैसी जैसी आगे बढ़ती है हमारे चेहरे पर पवित्रता की चमक बढ़ती जाती है, चेहरा हमारा नूरानी चेहरा बनता जाता है, क्योंकि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे संकल्प ऊपर के डायरेक्शन से चलते हैं, मनन चिंतन करते हैं तो भी संकल्प ऊपर ही चलते हैं, तो जितना योग करते हैं जितना मनन चिंतन करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, थॉट लेवल एनर्जी बहुत इसमें यूज होती है। तो वो कहां से आती है? जो हमारे शरीर में फिजिकल एनर्जी ब्रह्मचर्य की होती है वो फिजिकल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो सेवा में लगते हैं, और जितनी वो एनर्जी कन्वर्ट होती है ट्रांसफर होती है उतना हमारे चेहरे पर पवित्रता की चमक बढ़ती जाती है। समझा? योगी का चेहरा ही अलग दिखाई देता है, दुनिया वाले देखो और बाबा के बच्चे देखो, चेहरा ही अलग। मैं एक दिन यहां से जा रहा था, आबू रोड से अहमदाबाद में जा रहा था ट्रेन में, एसी के कोच में, तो बाजू के कोच में दो चार लोग बैठे थे अज्ञानी, वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को कैसे पहचाने, अब कपड़े सफेद है रंगीन है बात लगे लेकिन कैसे पहचाने ये ब्रह्मा कुमार है या ब्रह्मा कुमार। मैं कान लगा के तो सुन रहा था, कहते दो निशानियां उनकी है, बीके अगर हैं तो सबसे पहली निशानी उनके चेहरे पर खुशी होगी, दूसरे दुनिया वालों के चेहरे देखो उजड़े हुए चेहरे हैं, कोई खुशी नाम ढूंढ के भी खुशी नहीं मिलती, चिंता है, खुशी चेहरे पर होगी और दूसरा चमक उनके चेहरे पर होगी पवित्रता की। अज्ञानी लोग कह रहे हैं, बताओ अज्ञानी लोग, तालियां तो बजाओ जरा। हम अपने मुख से नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं। दूसरी निशानी है, जैसे जैसे पवित्रता हमारी बढ़ती है तो काम विकार जब खत्म हो जाता है तो काम अग्नि, योग अग्नि में काम अग्नि और क्रोध अग्नि बुझ जाती है। क्रोध अग्नि खत्म, काम अग्नि खत्म, शांति हमारे जीवन में पनपने लगती है। ठीक है, तीसरी निशानी है, काम विकार जब खत्म हो जाता है तो कामना, कोई दुनिया की कामना हमारे मन में नहीं रहती है क्योंकि काम विकार खत्म हो गया। ठीक है ना। और दूसरी निशानी है, जैसे जैसे पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती है ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी नेचुरल नेचर बनती है। खुशी रहने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, नेचुरल नेचर हमारा बनता है। नशा और खुशी चेहरे पर ऑटोमेटिक होती है। दूसरी निशानी है, ईर्ष्या की अग्नि, ईर्ष्या या द्वेष खत्म होने लगता है, घृणा ईर्ष्या द्वेष सब खत्म होने लगता है। सब आत्माओं के प्रति पॉजिटिव संकल्प रहता है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव एक आत्मा के प्रति भी ना हो। बाद में दूसरी निशानी है, संतुष्टता की अनुभूति रहती है, संतुष्ट सदा संतुष्ट रहते, प्रसन्न चेहरा, संतुष्ट रहते हैं, नेचुरल। ठीक है ना। अभी आप चार प्रश्न लिखो, हमारा अभी रियलाइजेशन का है ना अगला सेशन, अभी आपको आधा घंटे की 15-20 मिनट की छुट्टी है, लेकिन अगला सेशन हमारा रियलाइजेशन का है, तो इसलिए चार प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न है, जब हम आत्मा घर जाती है, परमधाम वापस घर जाती है, तो क्या आत्मा में विकारी संस्कार मर्ज रूप में रहते हैं या नहीं, इस पर सोचना है आपको अच्छी तरह से। जब आत्मा परमधाम रूपी घर हुआ वापस जाती है तो क्या उसमें विकारी संस्कार रहते हैं? अगर नहीं रहते हैं तो द्वापर युग आते ही वो इमर्ज हो जाते हैं, आत्मा में आ जाते, कहां से आते हैं? समझ में? बहादुरी गोड़ वाले भाई समझ में है ना। दूसरा प्रश्न, कलाएं, आत्मा की कलाएं कम क्यों होती हैं? और अलग अलग योग में अलग अलग कलाएं कम होती हैं। हमारी सतयुग त्रेता युग में तो दो होती है, दो दो होती है, द्वापर से चार और कलयुग से आठ होती है, ये क्यों होती है? कलाएं कम क्यों होती हैं और अलग अलग रीति से अलग अलग रूप में क्यों होती हैं? और तीसरा प्रश्न है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, कैसे, क्यों कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है? स संपूर्ण पवित्रता की स्थिति मुझे बनाना है, ये रियलाइजेशन आपको आना है। इस भट्टी से मुझे पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति बनाना है, इस पर आपको रियलाइज भी होना है और महसूस भी करना है और परिवर्तन भी करना है अपने को। ठीक है, ये तीन प्रश्न पर आप थोड़ा मनन चिंतन करना और फिर अभी फ्रेश होके फिर आना यहाँ। चौथा कौन सा बताया लास्ट में? संपूर्ण पवित्रता कैसे प्रश्न बनाया इसको? उसको प्रश्न कैसे बनाए? संस्कार संसार पवित्र संस्कार से पवित्र संस्कार संसार का आह्वान कैसे करें? पवित्र संस्कार से पवित्र दुनिया का संसार का आह्वान कैसे करें? उसके लिए हमें क्या करना होगा?